अध्याय तीन, बौद्ध एवं जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण। उत्तर वैदिक काल कुरु पांचाल क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के उदय एवं स्थापना का काल था। लोह तकनीक एवं अधिशेष आधारित कृषि व्यवस्था ने द्वितीय नगरीकरण का उद्भव किया। इसी नई उभरती सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के मध्य में धर्म सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। इस काल में ये आंदोलन वैश्विक थे। उदाहरण के तौर पर चीन में कन्फ्यूशियस एवं लोत्से, ग्रीस में पाइथागोरस, इजराइल में जर्मिया आंदोलन जैसे प्रभावशाली आंदोलनों को लिया जा सकता है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों में सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, यज्ञ कर्मकांड जैसे कारण माने जा सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब में लौह तकनीक के कारण नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, लेकिन इस काल में जटिल कर्मकांड एवं अत्यधिक यज्ञ बलि के कारण पशुधन की हानि हो रही थी। निरर्थक पशुवध एवं नई व्यवस्थाओं में बाधक था। लौह तकनीक ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अधिशेष को बढ़ाया। अधिशेष से नगरीकरण की गति तेज हो गई तथा वे दस्तकारी एवं व्यापार के प्रमुख केंद्र हो गए। बुद्ध ने इस नई व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पशु हिंसा की निंदा की तथा वैश्य एवं गृहपतियों को मान्यता प्रदान की एवं शिल्पिक व्यापार एवं सूदखोरी को वैधता प्रदान की। बुद्ध ने पुरोहितों के यज्ञ आडंबर, उनके लोभी एवं असंयमी जीवन की निंदा की तथा यज्ञों को निरर्थक बताया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य गंगा घाटी में लौह तकनीक एवं आग के प्रयोग ने बस्तियों एवं खेतों हेतु भूमि साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जली हुई वनस्पतियों के ठूठों एवं जड़ों को बिना लौह उपकरण के साफ करना संभव नहीं था। धान की रोपाई, गन्ने की खेती, सरसों आदि की फसलों के लिए काफी गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, जो मध्य गंगा घाटी में लोहे के हल के बिना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं बिहार की मिट्टी अत्यंत कठोर है, जिससे लकड़ी के हल द्वारा कृषि करना संभव नहीं था। हालांकि डीडी कौशाम्बी के लौह तकनीक द्वारा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की मान्यता बहुत सारे इतिहासकारों को स्वीकार्य नहीं है। निहार रंजन राय के अनुसार मौर्य काल या उससे पहले लौह तकनीक का ज्ञान इतना वृहद नहीं था कि वह सामाजिक क्रांति कर सके। यह माना जा सकता है कि केवल लौह तकनीक ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण कारण अवश्य है। चित्रित धूसर मृदभांड के युग में हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भगवानपुरा, अतरंजी खेड़ा आदि स्थान से लोहे के काटने के औजार बड़ांग, भाले की नोक, कुदाली आदि मिले हैं। इन औजारों में लोहे के भाल या ऐसे अन्य उपकरण शामिल नहीं हैं, जिनसे बड़े पैमानों पर वनों की सफाई या भूमि कृषि योग्य बनाकर वृहद स्तर पर कृषि हो सके तथा नगरों के विस्तार एवं पालन पोषण के लिए अधिशेष उत्पादन हो सके। ऐसा संभव है कि कुदाली द्वारा कृषि का प्रचलन ही अधिक सर्वव्यापक रहा होगा। उत्तरी काले पॉलिशयुक्त मृदभांडों के काल से लोहा एक आधारभूत घटक बन गया। लोहे ने गंगा यमुना क्षेत्र में आर्थिक आधार को मजबूत किया, जिसका प्रारंभ यहाँ पर उपजी नौपाषाण, ताम्रपाषाण संस्कृतियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लोह प्रयोग के कारण घने जंगल को साफ कर कृषि विधिवत रूप में प्रारंभ हो गई। इस नई कृषि व्यवस्था के लिए पशुधन की आवश्यकता थी, किंतु वैदिक कर्मकांडों में अधिकांश बैलों आदि की बलि दे दी जाती थी। इसके अतिरिक्त मगध क्षेत्र के दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों मांस एवं आखेट पर अधिक निर्भर थी, अतः ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो इसे रोकने में सक्षम हो। बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक प्रवृत्ति ने इसमें योगदान किया। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था में ऐसे कारकों ने जन्म लिया जिसने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया। उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन पर आधारित हो गई। पुरोहितों ने ऐसे यज्ञों का विकास किया जो अत्यंत कठिन एवं खर्चीले थे। इन यज्ञों से पुरोहित अत्यधिक दक्षिणा वसूल कर सकता था। इस कारण ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच तनाव की स्थिति हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रिय ब्राह्मण के मध्य मनमुटाव के साक्ष्य मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की तुलना में ब्राह्मण को उपहार पाने वाला, वैश्य को कर देने वाला तथा शूद्र को उसकी सेवा करने वाला कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को यज्ञ के पश्चात पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाएं तक दान कर देने चाहिए। उपनिषदों में कर्मकांड की निंदा तथा ज्ञान मार्ग का विकास इसी का परिणाम था। क्षत्रियों के नेतृत्व में ही उपनिषदों में ज्ञान मार्ग विकसित हुआ। विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवण जबाली, कैकेयी के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजातशत्रु ने ज्ञान मार्ग की सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित की तथा वर्ण व्यवस्था में यज्ञ श्रेष्ठता के आधार पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अनुचित माना। कालांतर में यज्ञिक कर्म कांड एवं वर्ण व्यवस्था में सुधार न होने के कारण इन लोगों ने नए समाज सुधार आंदोलन की नींव रखी। पार्श्वनाथ, गौतम बुद्ध, महावीर इन महापुरुषों में अग्रणी थे। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वस, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी अंग, बंग, मगध, मलय, मालव, अक्ष, वस, कोक्ष, प्रुद्र, राड, मल्ल, वज्जी, काशी, कौशल, अवाह, सभुत्तर जैसे 16 महाजनपदों का वर्णन है। इन महाजनपदों के साथ मार्गो जैसे उत्तरापद शिरडी संघो आहत सिक्कों का प्रश्नन हुआ। वैश्य वर्ग अत्यधिक समृद्ध हो गया, परंतु वर्ण व्यवस्था में इनका स्थान तीसरा था। वर्ण व्यवस्था का चतुर्थ वर्ग शूद्र भी समानता चाहता था, वह उपनयन से वंचित था तथा अन्य तीन वर्णों की सेवा उनका कर्तव्य था। इस कठोर सामाजिक प्रणाली को वे खंडित करना चाहते थे तथा सामाजिक व्यवस्था में बराबरी का स्थान चाहते थे। इन सारी समस्याओं के निदान हेतु नवीन मतों की आवश्यकता हुई। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म उनमें से एक थे। बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में न विकसित होकर वैदिक धर्म की सुधारक शाखा के रूप में विकसित हुआ माना जा सकता है। बुद्ध ने पूर्ववर्ती धर्म की ऐसी बातों को जो समाज के लिए ग्राह्य थी अपने धर्म में समावेशित किया तथा जो उपयुक्त नहीं थी उन्हें खंडित एवं निंदित किया। इस धर्म पर पहले से चले आ रहे परिवारजक संप्रदायों का प्रभाव था। वस्तुतः संन्यास का मूल बीज वेदों में वर्णित है। वैदिक धर्म का केंद्र ऋषि था जो तप के द्वारा सत्य का साक्षात अनुभव करने की योग्यता रखता था। अरण्यकों की रचना वनों के आश्रयों में हुई जहाँ आत्मिक ज्ञान के जिज्ञासु को एकांतवास चाहिए था। मुनियों की इसी ज्ञान पिपासा ने भिक्षाचरण एवं संसार के त्याग को एक पद्धति का रूप दे दिया। ब्राह्मण धर्म में इस विचारधारा ने संस्था का स्वरूप ले लिया। मनुष्य के लिए निर्धारित चार आश्रमों में अंतिम दो वानप्रस्थ या वैखानस तथा भिक्षारण करने वाले सन्यासी इसी कार्य के लिए थे। यह व्यवस्था केवल गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर चुके वृद्धों के लिए ही नहीं थी, अपितु आत्मखोजी युवक अध्यात्म की खोज में संसार से विरक्त होकर नास्तिक ब्रह्मचारी हो जाते थे। अनिकेत विचरण करने वाला यह सन्यासी एवं वैखानस समुदाय अनेक धार्मिक संप्रदायों में संगठित था तथा अपने आचार्यों द्वारा अनुशिष्ट मत एवं तप के विभिन्न नियमों का अनुसरण करता था। पालनी के अष्टाध्यायी के भिक्षु सूत्रों में एवं परिवारजकों के जीवन पाराशरण नामक भिक्षु वर्ग का उल्लेख किया है। मध्यम निकाय के अनुसार बुद्ध ने एक पाराशरी ब्राह्मण आचार्य के मत का विवेचन किया था। गौतम एवं बौद्धायन धर्म सूत्रों में विकनस के कहे हुए सूत्र ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिसका पालन वानप्रस्थी भिक्षु किया करते थे। वैखानस शास्त्र का नाम श्रामणक भी था क्योंकि वह अपने श्रमणों के लिए वर्णित था। यद्यपि श्रमण विचारधारा बौद्ध धर्म से ही प्रसिद्ध हुई लेकिन इसका वर्णन वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। मुनि शब्द का प्रथम वर्णन ऋग्वेद में है। यह भी सत्य हो सकता है कि मुनि पर अनार्य विचारधारा का प्रभाव हो। सत्व ब्राह्मण में तुरा कौवशेय का वर्णन एक मुनि के रूप में है, परंतु उनके पिता कौवाश एलूस को सरस्वती नदी के किनारे हो रहे वैदिक यज्ञ से अनार्य होने के कारण निष्कासित कर दिया गया था। संभवतः मुनि प्रथा योग ध्यान आदि सिंधु घाटी सभ्यता से अधिक प्रभावित दिखते हैं जो वैदिक आजो द्वारा स्वीकार किए गए। वैदिक धर्म में निवृत्ति मार्ग का प्रचलन अनार्य परंपरा की देन मानी जा सकती है। तैत्तिरीयारण्यक में श्रमण को एक प्रकार के ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है। वेदारण्यक उपनिषद में उन्हें तप से संबंधित माना गया है। ऋग्वेद में दशम मंडल के केसी सूक्त में ऐसे मुनियों का वर्णन मिलता है जो लंबे बाल वाले, मैले वस्त्र धारण करने वाले, हवा में चलने वाले तथा वायु में उड़ने वाले आदि थे। व्रात्य परंपरा का संबंध भी श्रमण परंपरा से किया जा सकता है। मनुस्मृति में व्रात्यों को सावित्री से उपजे द्विजातियों की संतान माना गया है। बौद्धायन धर्मसूत्र में व्रात्य बड़े संकर हैं। महाभारत में व्रात्य शूद्र पुरुष या क्षत्रिय स्त्री की संतान है। पीवी काणे के अनुसार व्रात्य की उत्पत्ति व्रत से हुई है। हरिप्रसाद शास्त्री ने इसे व्रात से संबंधित किया है जो कबीले का धोतक है। पंचवीश ब्राह्मण के अनुसार व्रात्य आर्य भाषा बोलते थे, परंतु आर्य कर्मकांडों को नहीं मानते थे। वे अपने कर्मकांडों में सोम के स्थान पर सुरा का प्रयोग करते थे। संभवतः इन्हीं कारणों से उन्हें निंदित माना गया है। पंचवीश ब्राह्मण में इन्हें दो भागों में बांटा गया है, अरहत यवत। जैन धर्म में अरहत का प्रयोग इसी का परिणाम दिखता है। शौत सूत्रों में व्रात्यों को नीचे ब्राह्मण या मगध ब्राह्मण कहा गया है, जिस विदित होता है कि वह पूर्वी क्षेत्रों में निवास करने वाले अनार्य थे। अथर्ववेद में व्रात्यों का तप करने वाला प्राण की क्रिया में प्रवीण माना गया है, या कठिन तपस्या करते थे। आर एन दांडेटकर ने उन्हें मुनि परंपरा का प्रणेता माना है, तथा अथर्ववेद में वर्णित ब्रह्मचारी सूक्त में उनके कर्मों को दृष्टिगोचर किया गया है। अतः बौद्ध धर्म वानप्रस्थ एवं परिवारजक सन्यासियों की जीवन पद्धति से भी प्रभावित था। जैकोबी के अनुसार भिक्षु वर्षावास व्यतीत करते, भिक्षु व्यवहार वस्तुओं का संचय न करें, प्राणी हिंसा न करें, भिक्षा के नियम, वस्त्र से छना हुआ पानी पीने का नियम आदि ब्राह्मण ऋषियों के आचार संबंधी नियम थे। वानप्रस्थियों एवं परिवारजक सन्यासियों के अपने नियम थे। वानप्रस्थी ग्राम से बाहर वन में आश्रम बनाकर निवास करते थे, जबकि परिवारजक भ्रमणशील था तथा वर्षा ऋतु को छोड़कर किसी भी जगह दो रात एक स्थान पर निवास नहीं करता था। परिवारजकों की एक विशेषता थी कि अकेले या कई मिलकर देश में भ्रमण करते थे, तथा विद्या के प्रसिद्ध केंद्रों में शास्त्रार्थ करते हुए ज्ञान का विस्तार करते थे। श्रुति में उन्हें चरक आचार्य अथवा शास्त्रार्थ करते हुए विचरण करने वाला विद्वान कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में वह परिवारजक कहलाए। ये दार्शनिक विचार विदेह में राजा जनक, पंचाल में प्रहवण, जम्बाली आदि की सभाओं में होते थे। पाली ग्रंथों में बहुत से ऐसे स्थानों का वर्णन है जिसमें यह विचार विमर्श हुआ करते थे, जैसे श्रावस्ती में रानी मल्लिका का उद्यान, लिच्छवियों का कूटागार, चंपा की रानी गगरा की पुष्करणी का चंपक उद्यान, राजगिरी के मोर निवास आदि प्रमुख थे। ये वाद विवाद परिवारजकों द्वारा अपने मत का प्रचार करने का एक उत्तम साधन थे। परिवारजकों की एक विशेषता यह थी कि प्रत्येक में अलग अलग संगठन थे। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ में प्राचीनतम भिक्षु संप्रदायों के नाम वर्णित हैं। ब्रह्मजाल सूत्र में बौद्ध धर्म के उदय के पूर्व श्रमणों एवं ब्राह्मणों के 62 दार्शनिक मतों का उल्लेख है, तथा सूत्र कृतांग जैसे जैन ग्रंथों में इनकी संख्या 363 है। इनमें 180 क्रियावादी, 84 अक्रियावादी, 67 अज्ञानवादी तथा 32 बैनिकवादी थे। अंगुत्तर निकाय में इन संप्रदायों की सूची प्राप्त होती है। पहला, आजीविक आहार वृत्ति के संदर्भ में इनके नियम अत्यंत कठोर थे। दूसरा, निगंठ, इनमें निर्गंथ भी कहा जाता, इन्हें निर्गंथ भी कहा जाता है। यह जैन है तथा केवल कोपिन धारण करते थे। तीसरा, मुंड शावक, मुंडित साधु वर्ग था। बुद्ध घोष के अनुसार यह निर्गंथों की ही एक शाखा थी। चौथा, जटिलक, ऐसे वर्ग जो केशों को जटा के रूप में बांधता था। गौतम ने इन्हें वैखान कहा है। जटिल ब्राह्मण थे तथा इनके केंद्र राजगिरी के पास स्थित उरुवेला नामक ग्राम था, जहां पर ये कश्यप गोत्र के उरुवेला, कश्यप, नदी कश्यप तथा गया कश्यप नामक तीन आचार्यों के साथ 10,000 की संख्या में निवास करते थे। वे अग्नि परिचर्या करते थे। बुद्ध ने उन्हें शास्त्र में पराजित किया तथा शिष्य बनाकर उन्हें परिवार से मुक्त कर लिया था। बुद्ध के दो महान शिष्य सारिपुत्र एवं महामुद्गलायन जटिलों से ही संबंधित थे। पांचवा, परिवारजक या भ्रमणशील सन्यासियों की संज्ञा है जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। छठवा, मंगडीक, इनका विवरण अज्ञात है। सातवा, तेदणिक, मनुस्मृति में इनका विवरण है। ये त्रिदंड धारण करते थे। बौद्ध धर्म में इन्हें ब्राह्मण सन्यासी कहा गया है। आठवा, अविरुद्धक, यह किसी मत के विरोधी नहीं थे। नौवा, गौतमक, संभवतः यह गौतम गोत्री कोई ब्राह्मण था जिसके अनुयायी भिक्षु नाम से ख्याते, यह भी हो सकता है कि यह बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त का मत हो। दसवां, देवधम्बिका, यह देवताओं की स्तुति करते थे। शमन धर्मों में बौद्ध एवं जैन धर्म सबसे प्रमुख थे, लेकिन इनके साथ अन्य मतों का उल्लेख भी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में मिलता है। ये आचार्य सुविख्यात दर्शन के यशस्वी संस्थापक तथा आदरणीय माने जाते हैं। इन सभी मतों के मौलिक विचार एक से दिखते हैं। इन सभी मतों ने वेदों की अपरिश्रय सत्ता का खंडन किया। इन मतों ने जन साधारण को वर्ण जाति के आधार पर अपने मतों में दीक्षित नहीं किया। इन सभी मतों के अपने अपने नियम विधान थे। श्रवण परंपरा के लगभग सभी मतों ने सांसारिक परित्याग की अवधारणा मानी। इन्हें गृह त्याग का समय निश्चित नहीं था, वे प्रवज्ञा कभी भी ले सकते थे। बौद्ध जैन धर्म के अतिरिक्त ऐसे 6 आचार्यों के नाम प्रमुख हैं। पहला पूरण कश्यप। पूरण कश्यप अक्रियावादी मत के संस्थापक थे। उनका जन्म ब्राह्मण वर्ण में हुआ था। मगध के शासक अजातशत्रु ने पूरण कश्यप से ज्ञान प्राप्त किया था। पूरण के अनुसार अच्छे कर्मों में कोई पुण्य नहीं है तथा बुरे कर्मों में कोई पाप नहीं है। उनके मत को अहेतुवाद भी कहा जाता है। संयुक्त निकाय में यह वर्णन है कि पूरण कश्यप ने शुद्ध या अशुद्ध के विचार में कारण एवं कार्य की भूमिका नहीं मानी है। दूसरा मक्खली गोशाल। ये आजीविक मत के प्रवर्तक थे। ऐसा विदित है कि इस मत के पोषक 2 आचार्य नंदवार एवं कीसकीश भी थे। गौशाल का जन्म स्वास्थ्य के पास हुआ था। गौशाल में जन्मने के कारण इनका नाम मक्खली गौशाल रखा गया। जीवन के आरंभ में ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा 24 वर्षों तक भ्रमणशील रहे, जिनमें उनके 6 वर्ष पुण्य भूमि में महावीर के साथ तपस्या में बीते। विचारों में भिन्नता के कारण महावीर से अलग हो गए तथा श्रावस्ती में कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया। यही उन्होंने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की। भगवती सूत्र में गौशाल को नालंदा में स्थित महावीर का शिष्य माना गया है। जैन परंपरा के अनुसार इनके पिता का नाम मक्खली था, जो भिक्षा हेतु तो किसी देवता की आकृति लेकर चलते थे। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार इनकी माता पिता श्रावस्ती में विचरण कर रहे थे। अत्यधिक वर्षा के कारण एवं उचित शरण न मिल पाने के कारण ये दंपति गोबहुल नामक एक धनी ब्राह्मण की गौशाला में रुक गए। यहीं पर इनकी माता भद्द ने इनको जन्म दिया। चीनी स्रोतों में इनका गोत्र मक्कड़ी तथा माता का नाम गौशली कहा गया है, जिसके कारण ये मक्खली गौशाल कहलाए। भगवती सूत्र के अनुसार आजीविक मत का साहित्य 10 पूर्व 8 महानिमित एवं 2 मग्गों में विभाजित है। इनकी भाषा अर्धमागधी थी। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार इनका साहित्य नवकदीर था। आजीविक कठोर साधना में विश्वास करते थे। वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे तथा अशोक वृक्ष की पूजा करते थे। वे चटाई के वस्त्र धारण करते थे, शरीर को गंदा रखते थे एवं मोर के पंख का गुच्छा रखते थे। गौशाल ने कठिन तपस्या पर बल देते हुए भी नियति को स्वीकारा है। वे मनुष्य का अपना उद्भव मानते हैं। गौशाल के अनुसार मनुष्य एक निश्चित चरण के पश्चात अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है। उसे 84 लाख महान कल्पो देवताओं के रूप में 7 जन्म विकृत स्वरूप में, 7 संवेदनशील रूप में तथा 7 परिवर्तनशील स्वरूप में जन्म लेना पड़ता है, जिसमें उसमें 5 लाख कर्म 60,603 निम्न कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा वह पुनः अपने पुराने स्वरूप में जन्म लेता है। गौशाल के अनुसार आत्मा में कोई अपनी बल ऊर्जा या शक्ति नहीं होती है, ये सब नियति पर आधारित होते हैं। वह अपना स्वरूप नियति से प्राप्त करते हैं, जो संगति एवं अपनी मूल प्रकृति से प्राप्त होते हैं। गौशाल के अनुसार ज्ञानी एवं मूर्ख दोनों 84 लाख सालों में अपने दुख एवं विचरण को समाप्त करवाने में सक्षम है। तमिल साहित्य के अनुसार आजीविकों ने 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा जीव को स्वीकार किया है। इन 5 में केवल जीव ही ज्ञान से पूर्ण है, वह अमर अविभाज्य है। गौशाल ने 6 रंग के जीव स्वीकार किए हैं, काला, नीला, हरा, लाल, पीला तथा सफेद। पूर्ण स्थिति श्वेत रंग से संबंधित है। यह पूर्ण ज्ञान पुरुष 2 प्रकार से हो सकते हैं, संबोधक और मंडल। प्रथम जीवन के चरमोत्कर्ष की स्थिति में अनवरत विद्यमान रहता है। द्वितीय वर्ग पृथ्वी पर आकर धार्मिक विचारों को प्रचारित करता है। यदि ऐसा नहीं होगा तथा सभी जीवों को मोक्ष मिल जाएगा तो संसार शून्य की स्थिति में पहुँच जाएगा। अतः संसार की अनवरत स्थिति के लिए मंडल मोक्ष का सिद्धांत विकसित हुआ। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति जीव को संसार को चलाने हेतु पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस मत का उदय लगभग 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रावस्ती में हुआ तथा इसका प्रभाव समस्त उत्तर भारत में था। सम्राट अशोक ने गया में बारबर की गुफाओं को बनवाकर आजीविकों को दान दिया था। दशरथ ने नागार्जुनी पर्वत पर गुफाएं दान की थी। वराहमिहिर की बृहद संहिता तथा बाणभट्ट के हर्षचरित में आजीविकों का उल्लेख है। वराहमिहिर ने इसे एक दंडी कहा है तथा बाण ने मस्करीन नाम से संबोधित किया है। महावंश के अनुसार चौथी शताब्दी में श्रीलंका में राजा पंडुकाशाय के समय यह मत प्रचलित था। दक्षिण भारत में यह मत लगभग 14वीं शताब्दी तक ज्ञात था। तत्पश्चात इस मत का वर्णन नहीं मिलता है, यह केवल बौद्ध जैन धर्मों के संदर्भ में ही वर्णित किया जाने लगा। तीसरा, अजीत केश कम्बली को भौतिकवाद का प्रथम पड़ेता माना जाता है। उसका केश कम्बली नामक मानव के बाल का कम्बल रखने के कारण पड़ा। इनके अनुसार मृत्यु के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतः कर्म फल के द्वारा कोई संभावना नहीं रहती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शारीरिक तत्व का भूगर्भी भाग धरा में विलीन हो जाता है। वायु का भाग वायु में, ऊर्जा का भाग अग्नि, जल का भाग जल में, इंद्रिय शक्तियाँ आकाश में विलोपित हो जाती हैं। अतः आत्मा की अमरता एवं पुनर्जन्म जैसे मत निरर्थक हैं। यज्ञ तथा बलि का कोई महत्व नहीं है, कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता है। शास्त्रीय साहित्य में भौतिकवाद के मत को बृहस्पति से जोड़ा गया है। माधव के सर्वदर्शन संग्रह में इसे चारबाग तथा हरिभट्ट के सददर्शन समुच्चय में इसे लोकायत कहा गया है। इन्हें उच्छेदवादी कहा जाता था। चौथा, पकुद कच्चायन। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार या उनके काल के 6 प्रसिद्ध मतों में से एक था। बुद्धघोष के अनुसार पकुद उनका व्यक्तिगत नाम था तथा कच्चायन गोत्र का नाम था। पकुद का अर्थ क्रोध से लगाया जाता है। पकुद को ककुद से भी संबंधित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ककुद वृक्षों के नीचे जन्म लेने के कारण इनका नाम पकुद पड़ा। पकुद ने 7 नित्य तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा को स्वीकारा है। इनके अनुसार जो सत्य है उसका विनाश संभव नहीं है, जो असत्य है उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह शाश्वतवाद का प्रभाव है। पांचवा, संजय वेलठ पुत्र। संजय के पिता का नाम वेलठी था। यह सारिपुत्र एवं महामौद्गल्यायन के प्रारंभिक गुरु थे। यह संदेहवादी थे। इन्होंने न तो किसी मत को स्वीकारा और न ही किसी का खंडन किया। संजय के 1000 अनुयायी थे, जिनमें कोलित, उपतिश, सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, सुप्रिय आदि प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मगध में खलबली मच गई। मगध के लोगों ने इस पर बिंबिसार से शिकायत भी की कि गौतम बुद्ध तो संतति के अभाव, वैधव्य और कुटुम्बकों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। छठवां, निघंट नाथ पुत्र। वे ना तो क्षत्रिय के पुत्र थे, बंधन मुक्त होने के कारण निघंट कहलाए। ये जैन धर्म का स्वरूप है। इन 6 बौद्धेतर आचार्यों के अतिरिक्त अन्य आचार्यों का भी वर्णन है, जिनके अपने अनुयायी थे। गोदावरी के अश्मक जनपद के निवासी ब्राह्मण रावड़ी के 16 शिष्य थे। वह अपने ज्ञान के लिए अति प्रसिद्ध था। पटतपाद नामक परिवारजक अपने 300 शिष्यों के साथ मल्लिकाराम विहार में रहता था। उसने बुद्ध से भेंट की थी। संदूक अपने शिष्यों के साथ कौशाम्बी में रहता था तथा वह बुद्ध के यश से चिढ़ता था। सरब एक बौद्ध भिक्षु था, लेकिन राजगृह में वह बौद्ध धर्म को त्याग कर परिवारजक बन गया था। सभी क्षत्रिय परिवारजक का पुत्र था। वह आश्रम बनाकर राजकुमारों को शिल्प की शिक्षा देता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अतः 6 शताब्दी ईसा पूर्व में श्रमणों एवं ब्राह्मणों के विविध संप्रदाय थे, जो भिन्न विश्वास एवं परंपराओं पर आधारित थे।